സിദ്ധാണം നമോ ആയിര്യാണം നമോ ഉവച്ഛായാണം നമോ ലോയി സവസാഹൂണം കേശോ പഞ്ച നമോയാരോ സവ പാവപണാസനോ മംഗളാണം ച സവ്യേശിം പഠമം ഹവൈ മംഗളം പഠമം ഹവൈ മംഗളം. पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की सम्यक दर्शन के 25 दोषों का कथन चल रहा है. शंका आदि 8 दोष मुख्य रूप से सम्यक्त्व के दोष माने जाते हैं. शंका आदि 8 दोष उसमें शंका दोष समझ में आया, कांक्षा दोष समझ में आ गया, निर्विचिकित्सा दोष वह भी समझ में आया, अमूढ़ दृष्टि दोष को समझेंगे. अज्ञानता से धर्म कार्य करना व अज्ञानियों के धर्म का समर्थन करना ये मूढ़ दृष्टि दोष है और इसके विपरीत गुण क्या है? अमूढ़ दृष्टि गुण. अमूढ़ मूढ़ यानी अज्ञान, अमूढ़ यानी अज्ञानता से रहित. अज्ञानता से सहित रहना मूढ़ दृष्टि दोष है और अज्ञानता को त्याग देना, अज्ञानता को छोड़ देना यह अमूढ़ दृष्टि गुण है. बहुत सारे अपने जिंदगी के जो दोष उत्पन्न होते हैं, पाप उत्पन्न होते हैं, मिथ्यात्व उत्पन्न होता है, व्यर्थ के कार्य हम करते रहते हैं, उसमें मूल कारण अज्ञान ही होता है. इसलिए हमारा ज्ञान जब अज्ञान के रूप में कन्वर्ट रहता है तब अज्ञान हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होता है. हमारा ज्ञान ही हमारे लिए अभिशाप है. हमारा ज्ञान जब अज्ञान में रहता है वह अज्ञान में ढला हुआ ज्ञान हानिकारक होता है. कर्म के बंध में, अशुभ कर्मों के आश्रय में, संसारी जीव को संसार में परिभ्रमण करने के लिए अज्ञान ही कारण होता है. तो ये अज्ञान क्या चीज है? वस्तु का स्वरूप ठीक ठीक पता न रहना. वस्तु का स्वरूप ठीक ठीक पता न रहना ही अज्ञान है. इसलिए वस्तु का स्वरूप ठीक से पता चला के हमें कोई भी धार्मिक कार्य करना चाहिए, ऐसा कहते हैं. जैसे हम संसार में इतने सावधानी से जीते हैं, कोई भी व्यर्थ का काम हम नहीं करते, व्यर्थ काम नहीं करते. और व्यर्थ काम जो होता है उसमें धन हानि, समय हानि 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 होती है। जैसे हम सांसारिक क्षेत्र में बहुत सावधानी से जीते हैं, व्यापार आदि क्षेत्रों में प्रमाद नहीं करते, बहुत सोच विचार करके कदम उठाते हैं, बहुत सोच समझ करके ही पैसा देते हैं, पैसा लेते हैं, व्यवहार हमारा कितना अप्रमत्त रहता है। जितना संसार को हम अप्रमत्त होकर के करते हैं, प्रमाद छोड़कर, आलस्य छोड़कर के करते हैं, उसी प्रकार धर्म को भी व्यवसाय समझना चाहिए। ये भी एक व्यवसाय है और वह आत्मा के लाभ के लिए हम करते हैं, आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा को दुख से बचाने के लिए, आत्मा को संसार से मुक्त करके शाश्वत सुख पहुंचाने के लिए यह व्यवसाय हम करते हैं। और इस व्यवसाय में, धार्मिक व्यवसाय में, अज्ञानता से कुछ भी करो चल जाएगा। और संसार क्षेत्र में बहुत सावधानी से करना चाहिए क्योंकि धन हानि होती है, ऐसा कह करके चलेंगे क्या? धर्म को भी उतना ही सावधानी से करना चाहिए, ये कहा गया है। बल्कि संसार में प्रमाद हो जाए तो चल जाता है। आज कुछ प्रमाद करते हैं, व्यापार उद्योग व्यवसाय में भूल हो जाती है तो हजारों का नुकसान हो जाता है। तो हजारों का नुकसान आज का कल के दिन हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन धर्म का ऐसा नहीं है। इस जिंदगी में ऐसी भूल हो गई जिस भूल के कारण से सम्यक्त्व की हानि हो गई और दूसरे क्षण में हमारा मरण हो गया। दोष सहित यदि मरण हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? कितना अपना बड़ा नुकसान हो जाएगा। धर्म क्षेत्र में उत्पन्न हुआ नुकसान, इसको भरना बहुत मुश्किल होता। थोड़ी भूल हो जाती है तो हमारा रत्नत्र ही कट हो जाता है, पुनः उसको जगाने में बड़ा परिश्रम होता है। एक विशेष बात है, चारित्र में कहीं चूक जाए तत्काल हम आचरण को बदल लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, पर सम्यक्त्व एक ऐसी चीज है जो श्रद्धा की परिणति है, श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन कहा है। श्रद्धा अगर डिग गई क्या हो जाएगा? सम्यक्त्व की अगर हानि हो गई तो मूल की हानि हो गई, मूल हानि। दंशन मूलो धम्मो, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है सम्यक्त्व धर्म का मूल है, जड़ है। जैसे पेड़ की जड़ होती है, जड़ के बिना पेड़ का विकास नहीं होता है, उस प्रकार सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। हाँ, धर्म का मूल है। और धर्म क्या है तो कहा सम्यक तो पूर्वक जो चारित्र होता है, चारित्र को धर्म कहा। वो चारित्र कैसा? सम्यक तो पूर्वक। फल है, पत्ते हैं, शाखा हैं, ये पेड़ के जो अन्यांश हैं, अन्य विभाग हैं, ये जड़ के बिना है क्या? जड़ नहीं होते तो ये भी नहीं होते। पेड़ की जड़ ही नहीं है तो ये उत्पन्न ही नहीं हो सकते, इनका जन्म हो ही नहीं सकता था। उसी प्रकार कहा सम्यक दर्शन के बिना चारित्र का जन्म होता ही नहीं, और यदि हो जाए तो वो सम्यक चारित्र कहलाएगा ही नहीं। तो कौन सा चारित्र कहलाएगा? मिथ्या चारित्र। बीज बोया और उसकी जड़ नहीं बनी तो अंकुर भी नहीं बनेगा। सबसे पहला जड़ की उत्पत्ति होती है, वो बीज जब जमीन में होता है उसको पानी दे देते हैं, तीन चार दिन में पहले उसकी जड़ बनती है। एक साथ दोनों, मतलब जड़ भी बनती है और इधर अंकुर भी फूटता है, दोनों काम एक साथ होते हैं। विदाउट आधार के कुछ नहीं होता, भूमि उसके लिए आधार है और उसमें जिस क्षण में जीव आया, उसमें बीज में जन्म लिया, उस समय ही नीचे जड़ की उत्पत्ति और ऊपर अंकुर की उत्पत्ति दोनों एक साथ होने लगते हैं, एक ही साथ होने का काम है ये। और बीज बोया है, न जड़ की उत्पत्ति है न अंकुर की उत्पत्ति है, तो फिर क्या होगा? फिर बीज में कोई दोष है यही कहा जाएगा। जिसमें जड़ भी नहीं फूट रहा है और अंकुर भी नहीं हो रहा है, तो बीज दूषित बीज है। तो दूषित बीज मिथ्या बीज है, मिथ्या बीज है, व्यर्थ है, वो बोना ही व्यर्थ है, बो दिया है वो उगने वाला नहीं है। तो निर्दोष बीज को हम बोते हैं और उसके लिए कीड़ा न लगे इसलिए औषधि का लेप भी करते हैं। किसान बहुत सावधानी से बीज बोता है, एक तो बीज खरीदने में ही पैसा लगता है और वह पैसा देकर खरीदा भी है, बोया भी है और उग करके नहीं आया और कीड़ा लग गया तो बहुत नुकसान पहुंचता है उसके लिए। वो क्या करता है, बीज को भी दवाई में डाल करके घोल देता है, फिर दवाई सहित बीज को भी होता है तो सुरक्षित उगता है। वो सम्यक्त रूपी बीज को हमें दवाई लगा करके बोना चाहिए। कौन सी दवाई? ये आठ दोषों से मुक्त रखने वाली दवाई चाहिए। तो क्या है वो? तो ज्ञान पूर्वक इन आठ गुणों को पालन करना, यानी हमारे सम्यक्त के साथ ज्ञान की औषधि है, तर्क की औषधि है, सतर्क यदि हम हैं तो हमारे सम्यक दर्शन में कभी दोष उत्पन्न नहीं होता। और जिसके पास ज्ञान नहीं होता उसका सम्यक्त का बीज बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। अज्ञान का कीड़ा लग गया तो वह सम्यक दर्शन रूपी बीज नष्ट ही हो जाएगा, टिकने वाला नहीं। तो सम्यक्त की रक्षा के लिए क्या चाहिए हमारे लिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान रूपी औषधि के माध्यम से सम्यक्त रूपी बीज को विकसित करना है, इसलिए ज्ञान का महत्व है। ज्ञान का महत्व है इसलिए उन्होंने कहा मूल दृष्टि दोष को छोड़ो, उसके बिना भी सम्यक दर्शन की रक्षा नहीं होती। अज्ञानता से धर्म कार्य करना, ये मूल दृष्टि दोष है। कोई भी धर्म करो उसको पहले समझो, सही है तो करो, सही नहीं है तो मत करो। पहले उसको विचार करो, शास्त्र के आधार से, जिनवाणी के आधार से ये योग्य है या अयोग्य। 150 श्लोक हैं, कल कहा था हर प्रश्न को पूछने की जरूरत नहीं रहती, 150 हैं, आपका ही ग्रंथ है। आपका ही संविधान ग्रंथ, हमारे संविधान के अनुरूप मेरा कार्य है क्या? नहीं। हमारे लिए भी संविधान ग्रंथ है, आप लोगों के लिए भी है। अपने लिए कौन सा ग्रंथ है? मूलाचार। आप लोगों के लिए रत्नकरंड श्रावकाचार। वो संविधान ग्रंथ सामने रखेंगे तो उस संविधान में आपका कार्य बैठता है तो करना है, नहीं बैठता है तो छोड़ देना है। छोड़ने में भी देर नहीं लगनी चाहिए और पकड़ने में भी देर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि धर्म कर रहे हैं तो सावधानी के साथ ही करना है, सावधानी को छोड़ करके कुछ भी नहीं करना। और देर नहीं लगनी चाहिए, देर संशयवाद कहलाता है, तत्काल होना चाहिए। हाँ, एक बार ज्ञान हो गया ना, जिनवानी पर विश्वास नहीं किया, जिनवानी में कहीं लिखा नहीं है, संविधान में नहीं बैठ रहा है, तो फिर इसको करूं क्या नहीं करूं, करूं क्या नहीं करूं, महाराज से पूछूं। कौन कौन सी चीज महाराज से पूछते बैठोगे? वकील के समान संविधान ग्रंथ ही अपने पास रखो ना, पॉइंट उसे लेकर के लड़ सकते हैं। वकील लोग क्या करते हैं, देश का संविधान जो है उनके सामने रहता है, उनके बहुत सारे बुक्स होते हैं, एक केस को पास करने के लिए बड़ा परिश्रम होता है वकीलों को, क्योंकि वहां पर दो पक्ष होते हैं, असत्य को भी सत्य सिद्ध करने वाला पक्ष भी होता है और सत्य को सत्य साबित करने वाला भी पक्ष होता है। लड़ाई इसी के बीच में, संघर्ष इसी के बीच में होता है। तो संविधान ग्रंथ क्या बोल रहे हैं और किस पॉइंट से हम लड़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है वहां। ऐसा रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ यदि आपको पूरा पता है तो आपको ये प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हो सकते कि आज दशहरा है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, महाराज से पूछूं क्या, इनसे पूछूं कि उनसे पूछूं, जरूरत नहीं। संविधान ग्रंथ है कि नहीं घर में, उसे देख लो, उसमें कुछ कहा है क्या? नहीं कहा है। नहीं कहा है तो तत्काल छोड़ो उस क्रिया को, आगे पीछे देखना ही नहीं। महाराज जैसे इतने कट्टर कैसे हो सकेंगे हम मुसलमान जैसे? ये मूर्ख कट्टरता की बात करता है। कट्टर हुए बिना क्या धर्म आना जिंदगी में संभव है? कट्टर बनना ही चाहिए। क्या कमजोर रखोगे धर्म को? क्या कीड़े लगने दोगे? अपने संपत्ति को बेकार खोओगे? धन है वो, महत्वपूर्ण बीज है जो मोक्ष पैदा करेगा, सम्यक ज्ञान पैदा करेगा, श्रद्धा पैदा करेगा, उसको कीड़े लगने नहीं देना। क्षण भर में ये समझ लेना चाहिए मेरा कर्तव्य नहीं है ये। जैन को तो चाहिए यल्ला है, यल्ला चाहिए। मुसलमान कहते हैं अल्लाह और जैन कहता है यल्ला। एक नमाज का मंत्र तो बनाओ फिर, ओ यल्ला, तुम्हारा एक अलग से मंत्र बन जाए। जैन दिमागी नहीं है, बाकी सभी धर्म अपने अपने आप में बहुत मजबूत हैं, जैन ही अति भ्रष्ट है। इसको सब चाहिए। अब देखो तुलना करो जरा, वहां तथ्य नहीं है, उनके यहां अज्ञान है, दोष है, मिथ्या तो है, फिर भी इतने कट्टर हैं। और आपके पास तो रत्न है, धर्म है, सच है, सत्य है, कल्याणकारी वस्तु आपके हाथ में पड़ा हुआ है और उसमें आप कट्टर नहीं, ये कितनी मूर्खता है। धर्म के प्रति इतना समर्पण, इतनी श्रद्धा, इतना वैभव पूर्ण, आदर्श पूर्ण धर्म है, इसके प्रति हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा कितनी है, ये विचार किया जाता है। जब ऐसे विचार आते हैं, तुलनात्मक विचार आना चाहिए। देखो उसमें वो अज्ञान होकर के भी इतने कट्टरता से साथ कर रहे हैं, जो अज्ञान है ये जानने को तैयार नहीं, तो भी कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। ऐसी सोच से ही सम्यक दर्शन मजबूत होता है, नहीं तो लड़बड़ काम कल्याणकारी नहीं है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हाथ में रह गया, उसके साथ मर गए, तो मनुष्य जीवन की सफलता क्या रही, सत्य की अनुभूति नहीं हुई, हम चले गए ऐसे ही, क्या रहा। कट्टरता ही जैनत्व है, और ये कट्टरता बेकार है क्या जैन के लिए, हा? वो कितने कट्टर हैं, आप क्यों नहीं हैं, प्रश्न ये उठता है, आपके दिमाग को क्या कीड़ा लग गया। हाँ, मिथ्या मार्ग पर इतना कट्टर होते हैं, उनको सम्यक तो का कीड़ा नहीं लग सकता वहाँ। और यहाँ सम्यक तो बीज बिल्कुल उत्कृष्ट बीज है, निर्दोष बीज है, इसको कीड़ा लग जाए तो कितनी हानि। और धर्म तो यही है ना, प्राकृतिक धर्म है ये कोई सांप्रदायिक नहीं, ये कोई झगड़े झंझट वाले धर्म नहीं है। यहाँ तो प्रकृति क्या है उसके साथ जीना है। सत्य एक प्रकृति का अंश है, या प्रकृति ही सत्य है, यूं कह के चलो। प्रकृति में जो सत्य है उसके साथ आत्मा को करना है, और मनुष्य मात्र को करना है। ये दिमाग में भेद रखो ही मत कि ये मनुष्य हिंदू है, ये मनुष्य मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है। धर्म के सामने कोई जाति भेद होता ही नहीं है, और उनमें से मैं एक जैन हूं, ऐसा धर्म भेद नहीं है। यहां दूध है तो दूध है, उसमें नवनीत निकलता है तो नवनीत है, घी निकलता है तो घी ही है, घी की कोई जाति नहीं होती। किसी के घर में भैंस क्यों ना हो, उसमें से निकलने वाला घी अलग अलग है क्या, वो तो मुसलमानों के घर में है भैंस, वो तो घी भी मुसलमान है, ऐसा घी का कोई संप्रदाय, घी घी है। वह घी सबके घर में होना चाहिए, वो हिंदू में भी होना चाहिए, जैन में भी होना चाहिए, और मानव मात्र में होना चाहिए, और सब देश में होना चाहिए। धर्म वही है, जिस धर्म को हम पाने जा रहे हैं वो जैन का है ऐसा नहीं समझो, मानव मात्र का है वो। मिथ्यात्व की कोई जाति है क्या बताओ, नहीं। असंयम की कोई जाति है क्या बताओ, नहीं। पाप की कोई जाति है क्या बताओ, नहीं। पाप की जाति नहीं है तो पुण्य की जाति कहां, अधर्म की जाति नहीं है तो धर्म की जाति कहां। धर्म संसार में एक ही, वो जो है सत्य, आत्मा का सत्य। और आत्मा का सत्य क्या है तो सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन क्या चीज है तो ज्ञान से चलना, जो सत्य है उस पर श्रद्धान करना, ये श्रद्धान जो है ये सम्यक दर्शन है। वस्तु को यानी आत्मा को, शरीर को, सृष्टि को आप ज्ञान से विचार करो और जो उसमें आपके लिए लाभदायी है उसको ग्रहण करो और जो हानिकारक है उसको त्यागो। बस ये उपदेश है तीर्थंकरों का। तीर्थंकरों ने संप्रदाय परक उपदेश नहीं दिया, जाति परक धर्म वाला उपदेश नहीं दिया। तीर्थंकरों ने उपदेश दिया है संप्रदायातीत, जाति के अतीत, प्रकृति में स्थित धर्म का उपदेश दिया है। यह आत्मा भी एक प्रकृति है, हम अनादिकाल से संसार में इस सृष्टि में मौजूद हैं, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, हम भी एक प्रकृति के हिस्से हैं क्या नहीं, प्रकृति की एक इकाई है क्या नहीं, प्रकृति के अंश है क्या नहीं। अनंत अनंत जीव राशि है, उन जीव राशियों में हम भी एक जीव हैं और हमारे लिए अपने आत्मा में मोक्ष की उत्पत्ति होती है, सुख की उत्पत्ति होती है, वो अपनी सत्ता में अपनी योग्यता में पड़ा हुआ है वह सुख, मोक्ष का सुख। तो उसी सुख को साधने का मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और ये तीनों क्या ये कहें कि जैनों को ही है, ये रत्नत्रय धर्म जैनों का ही है क्या, मानव मात्र का है ये। इसलिए ये कहा जाता है, कहना चाहिए कि रत्नत्रय की साधना के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि जैन संप्रदाय में ही दीक्षित हो जाओ। जैन संप्रदाय कौन सा, जो रत्नत्रय का पालन कर रहा है वहीं आ जाओ तो ही मोक्ष होता है, ऐसा कुछ नहीं। तुम कहीं भी रहो इस सिद्धांत को अनुसरण करो, ये वहीं पर मोक्ष हो जाएगा। तुम कहीं सुमेरु पर्वत भी रहो, पर्वत पर के भी रहो, सुमेरु पर्वत पर भी रहो और पशुओं के बीच में भी रहो और पशुओं से भी क्यों ना उत्पन्न हुए हो तुम, लेकिन तुम्हारे लिए आत्मा में मोक्ष चाहिए है तो रत्नत्रय का पालन करना ही पड़ेगा। पेट वड़गांव में आओ और जैन कुल में आ जाओ और फलाने कुल में आ जाओ, घुस जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई हिंदू है इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेता है, सत्य को समझा उसने, अज्ञान को छोड़ेगा क्या नहीं। ये पाप है समझ में आ गया तो अज्ञान को निश्चित रूप से छोड़ेगा। हमारे गौतम गंधर्व गणेश कौन थे, ब्राह्मण थे, वैदिक थे, उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। ये जरूरी नहीं था कि महावीर के पास आओ और फिर बाद में समझ करके तुम मुनि दीक्षा ले लो। तुम अपने संप्रदाय में रहते, वहीं रहते रहते मुनि दीक्षा ले लेते, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र क्या होता इसका चिंतन मनन करते इस सत्य का, और वहीं पर निर्ग्रंथ बन जाते तो क्या मोक्ष नहीं मिलता। परंतु पूर्व का जो वेश उनका था, जो आचार था, जो विचार था, जो श्रद्धा थी, उससे मोक्ष मिल सकता था, नहीं मिल सकता था, क्योंकि वो मिथ्या मार्ग था। तो मिथ्या मार्ग को किसने जन्म दिया है, आत्मा ने, और मिथ्या मार्ग को मिटाने वाला कौन, आत्मा ही, चलने वाला कौन, आत्मा ही, मोक्ष को प्राप्त किया करने वाला कौन, आत्मा ही, सब आत्मा ही, गलती भी करता है आत्मा, गलती को त्यागता भी है आत्मा। अब इसमें धर्म के विभाजन कैसे हो गए, कहां से लाएंगे आप। संप्रदाय धर्म है क्या, कोई मनुष्य वर्ग धर्म है क्या? धर्म आत्मा में है, धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उपासना, आराधना, उसका पालन, उसका आचरण धर्म कहलाता है। और यह धर्म अगर ये समझ के चलो कि महावीर का ही है या तीर्थंकरों का ही है और जैनों का ही है, जैन समाज का ही है, जैन ग्रुप का है, ऐसा होता तो स्वर्ग में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी जब तक कि वो इस महावीर की परंपरा में वो देवलोक जन्म न ले। हो सकती थी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, जबकि स्वर्ग में भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो रहा है, त्रिंच गति में भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो रहा है, नरक में भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो रहा है, तीन लोक में सम्यक दर्शन व्याप्त है। इस सम्यक दर्शन की व्याप्त सम्यक दर्शन के कारण से ही ये बताया जाता है कि यह धर्म विश्व धर्म है। विश्व यानी तीन लोक, तीन लोक में सम्यक दर्शन जहां जहां उत्पन्न हो रहा है वहां तक इस धर्म का फैलाव है। नीचे भी फैलाव है, ऊपर भी फैलाव है, त्रिक दिशा में भी असंख्यात भोग भूमि, जगन भोग भूमि, एक राजू प्रमाण विस्तार में मध्य लोक में भोग भूमि में सम्यक दृष्टि जीव है क्या? नहीं, और वो केवल त्रिंच गति के हैं, एक राजू प्रमाण असंख्यात द्वीप समुद्र द्वीपों में भोग भूमि की संरचना है, सब त्रिंच है, तो वहां पर मिथ्या दृष्टि त्रिंच है क्या? नहीं, मिथ्या दृष्टि भी है। सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं, तो मध्यलोक में कहां पर सम्यक दृष्टि नहीं है? सब जगह हो गए, और मध्यलोक एक राजू प्रमाण विस्तृत है, असंख्यात द्वीप समुद्र वाला चौक, असंख्यात त्रिंच सम्यक दृष्टि है, और सम्यक की उत्पत्ति संगी पंचेंद्री जीव को ही होती है, और भोग भूमि के सारे जीव संगी पंचेंद्री हैं, किंतु कुछ को सम्यक दर्शन है और कुछ त्रिंचों को सम्यक दर्शन नहीं है, और जिनको नहीं है वहां मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व अधर्म है, अधर्म का फैलाव भी एक राजू पर्यंत है और धर्म का फैलाव भी एक राजू पर्यंत है। ऊपर सर्वार सिद्धि विमान तक सम्यक दृष्टि देव है, सिद्ध शिला के नीचे नीचे, और सिद्ध परमिष्टि को भी ले लो वो तो सम्यक दृष्टि रहते ही है, लोक के अंतिम शिखर तक ये सम्यक्त्व का फैलाव है, सम्यक दृष्टि जीव पाए जाते हैं, और नीचे नरक में सातवें नरक तक सम्यक दृष्टि जीव है। तो बोलो जैन धर्म कहां नहीं है? सम्यक रूप जैन धर्म कहां नहीं है? सभी जगह है। तो सम्यक तो सम्यक तो सम्यक तो सम्यक तो ये तो जैनों के लिए, हम लोगों के लिए है, ऐसा समझना चाहिए। तो प्राणी मात्र का है, त्रिंच मात्र का है, देव मात्र का है, नारकी नरक गति में नारकी जीवों को भी सम्यक दर्शन है, जो ज्ञानी बन जाता है वो सम्यक दृष्टि बनता है, जो अज्ञानी रह जाता है वो मिथ्या दृष्टि रह जाता है। सम्यक्त्व से कल्याण है और मिथ्यात्व से अकल्याण है। जैन धर्म को विश्व धर्म कहा, क्यों कहा? इसी फैलाव के कारण, यानी सम्यक दर्शन ऊपर से लेकर नीचे तक और त्रिक दिशा में सब जगह सम्यक दृष्टि जीव फैले हुए हैं, इसलिए विश्व धर्म है। देव भी जैन है, नारकी भी जैन है, कुछ भी फर्क नहीं। आपके घर में भी घी है और दूसरे के घर में भी घी है, फर्क क्या है? यही तो बताया था। घी में कोई फर्क होता है क्या? किसी के घर में घी है, फर्क है क्या? उस घी को भी टीका लगाओ कि जैन घी और ये हिंदू घी। सम्यक दर्शन सर्वत्र एक सा है। आप प्राप्त करोगे आपका भी वही सम्यक दर्शन है, देव प्राप्त करेगा तो वह भी वही सम्यक दर्शन है। हाँ, सम्यक दर्शन में विविधता जरूर है। उपशम सम्यक दर्शन, क्षौपशम सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन, तीन प्रकार के। और ये जिस जीव ने जैसा पुरुषार्थ किया है वैसा वह उतना फिल्टर है। वो उपशम सम्यक दर्शन से क्षौपशम सम्यक दर्शन होता है, क्षौपशम सम्यक दर्शन से क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, तो सर्वोत्कृष्ट तो क्षायिक माना जाता है, जो कि मिथ्या तो कर्म के सर्वथा विनाश से क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उपशमन करने से क्षौपशम, क्षय और उपशमन करने से क्षौपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, और सर्वथा उपशमन करने से उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ये कर्मों को जीतने की बात है। हम अपने कर्मों को जीते, मिथ्यात्व कर्म के उदय में हम मिथ्या दृष्टि बनते हैं, उस मिथ्यात्व के उदय को जीते। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से अज्ञानी बनते हैं। अंतराय कर्म के उदय से धनहीन बनते हैं। कौन सा अंतराय कर्म? भोगांतराय कर्म और लाभांतराय कर्म। लाभांतराय कर्म के उदय में भोगोपभोग सामग्री का लाभ नहीं मिलता, ये लाभांतराय कर्म। लाभांतराय कर्म का उदय है इसलिए धनहीन है, और वह लाभांतराय कर्म को अगर आप जीत लेंगे धन बढ़ता जाएगा। ये सिद्धांत सत्य है, इस सिद्धांत का अध्ययन करना आवश्यक है, और इस सिद्धांत के पीछे कोई झगड़े झंझट नहीं है संप्रदायों के। अपन अभी तक कौन सा धर्म करते आए मालूम? जैन है तो जैन परंपरा से, और जो परंपरा निभा रहे हैं उसमें जैनत्व नहीं, और उसी को जैन धर्म समझ के चल रहे हैं। वस्तु स्वरूप ही अलग है और कुछ हमारा क्रियाकांड ही अलग है। यहां तो कर्म सिद्धांत को समझकर उनको जीतने का रास्ता है, यहां कर्मों को समझना है और चलना है। अपन क्या करते आए अभी तक? क्रियाकांड को समझना है और चलना है, कौन क्या करता है उसको समझना, उनको ग्रहण करना, उनके पीछे चलना है। पहला पासुन कहते हुए रटते हुए चलना ही चलना है, ऐसे धर्म करते चले आए अपन, इसलिए जिंदगी बर्बाद हो गई है। हमारी जिंदगी डूबी हुई जिंदगी थी और वो धर्म का रास्ता नहीं था, ऐसा धर्म किया। और इस चातुर्मास में बार बार हैमरिंग हो रहा है तत्व ज्ञान का, अब समझ में आ रहा है कि जैन धर्म क्या है, अब समझ में आ रहा है आत्म धर्म क्या है। आत्म धर्म ही जैन धर्म है। तुम अपने को समझो ये जैन धर्म है, दुनिया को छोड़ो, दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, अपने आत्म तत्व को, आत्म सिद्धांत को समझो। आत्मा संसार में ही कर्मों से बंधा हुआ है, कर्मों से बंधना अधर्म है, कर्मों से मुक्त होना धर्म है, यह है जैन धर्म। दशहरा आया, पेड़ काटा, पत्ता का तोड़ दिया, दूसरे को दे दिया, हो गया धर्म। इस मूर्खता के धर्म को अनादिकाल से किया है। हिंसा को धर्म समझा, किसी को, दूसरे को दुख दे करके अपने को सुख माना, यही है अमूढ़ दृष्टि दोष, ये सम्यक्त्व का दोष है। कर्म सिद्धांत में अनाचार उत्पन्न होता, अतिचार भी नहीं, अनाचार उत्पन्न होता है। हिंसा को धर्म जहां माना वहां अनाचार आ गया। जो करना है करो, लेकिन हिंसा से बच के करो। महाराज, हम खाने पीने में भी तो हिंसा करते हैं, उससे भी बचो ना, बचना हो तो बचो, ऐसा बचो कि मर जाओ, ऐसा तो नहीं कहा कि हिंसा से बचो और मरो। क्या कहा? आवश्यक हिंसा को छोड़ नहीं सकते, उसको करना पड़ता है, करो, वो तो जिंदगी का साधन है, उसके बिना जिंदगी तुम्हारी चल नहीं सकती। पर अनावश्यक हिंसा कितनी कितनी हो रही है, इसका संशोधन करोगे कि नहीं? वो है तुम्हारा धर्म का रास्ता। अपने जीवन में अनावश्यक हिंसा जहां जहां हो रही है उसको अगर नहीं रोकते हैं तो धर्म नहीं आया है, और उसको धर्म समझ करके चल रहे हो। किस बेस पर? कि हम खाने में भी हिंसा करते हैं तो इसको क्यों नहीं करना चाहिए। इस बेस पर उसको भी करते जा रहे हैं और इसको भी करते जा रहे हैं तो धर्म के रास्ते से चल ही नहीं पा रहे हैं। ये भ्रम है कि इसको करते हैं तो उसको करना भी अनिवार्य, यानी आवश्यक हिंसा कर रहे हैं तो अनावश्यक हिंसा करना भी अनिवार्य समझ करके अगर चल रहे हो तो भटक गए हो, रास्ते से भटक गए। ऐसा नहीं, यहां पर तो रास्ता धर्म का, अनावश्यक हिंसा से बचना, ये कहा है, इसको प्रतिपल सोचना। एक कदम भी रख रहे हैं आगे तो आवश्यक क्या अनावश्यक, हिंसा कितना अहिंसा कितना, सोच समझ करके चलो, ये कहा है। ये जैन धर्म है, ये आत्म धर्म है, ये जीतने का धर्म जैन धर्म। क्या जीत रहे हो? हिंसा को जीत रहा हूं, अहिंसक बनते जा रहा हूं। अहिंसक बनने वाला आत्मधर्मी जैन धर्मी, जिसने जितने प्रमाण में हिंसा को जीत लिया वो जैनी, और जो जीत नहीं पाया वो हिंसक अजैनी। अजैनी का मतलब क्या? हिंसक। और हिंसक कौन नहीं है? सभी हिंसक हैं। सारी आत्माएं दुनिया में कुछ न कुछ हिंसा भी करती है, कुछ न कुछ अहिंसक भी होती है, और कोई कोई बिल्कुल ही हिंसक ही होती है, अहिंसक नहीं होती। कर्मों को ग्रहण करना, बांधना, ये राग द्वेष होता है कि नहीं? राग द्वेष होता है। कर्मों को खींचा और बांध लिया, किसकी हिंसा हो गई? अपनी ही आत्मा की हिंसा हो गई। मिथ्यात्व भी कर्म है, चारित्रमोनी भी कर्म है, ज्ञानावरणी भी कर्म है, अंतराय भी कर्म है, इन कर्मों को हम खींच रहे हैं, आत्मा के ऊपर डाल रहे हैं, हिंसा किसकी हो रही है? इन कर्म रूपी पत्थरों को ले लेकर के आत्मा के ऊपर पटक रहे हैं, अपनी ही हिंसा हो रही है। अपने को अपनी हिंसा से बचाने का नाम जैन धर्म है। यही आत्मधर्म है, आत्मा को बचाना। किससे? हिंसा से। पत्थर फेंकने से बचना, बस ये। और अज्ञानी जीव पत्थर डालते हुए ही चलता है अपने ऊपर, पत्थर पटकते पटकते हुए ही चलता है, वो अज्ञान है। और तीर्थंकर भगवान इसी अज्ञान को दूर करना चाहते हैं, ज्ञान रूपी औषधि देकर अज्ञान को दूर करना चाहते, संसारी जीवों को ज्ञान देते। वो ज्ञान रूपी प्रकाश जीवन में आ गया तो वह आत्मा भी परमात्मा बन सकता है, वह आत्मा भी अहिंसक बन सकता है। परमात्मा बनने से पहले अहिंसक बनता है, बनता जाता है, अहिंसा की साधना करता चला जाता है। जितनी जितनी अहिंसा की साधना होती जाती है, परमात्मा के निकट पहुंचता जाता है। ये है, बहुत सरल है, समझे तो सरल है, उलझोगे तो दुनिया में भटकते रहोगे। इतना कट्टर क्या, उतना कट्टर क्या, अरे मूर्ख, कट्टरता के बिना कल्याण नहीं होता। आत्मा को कठोर बनाना ही पड़ेगा, आत्मा को परमात्मा बनाना क्या मामूली खेल है? ये सर्कस, ये बहुत बड़ा सर्कस है, ये हर कोई के वश की बात नहीं है। ये देखा देखी बहुत कुछ होता है, उस रास्ते को छोड़ना पड़ता है। यहां छोड़ करके चलने वाला कल्याण करता है और दुनिया उसको पालक पागल कहती है, कहती है। वो अज्ञान रूपी नशे में है, पी करके बैठे सभी, अज्ञान रूपी शराब को पी के बैठे हैं, आपको देख करके पागल समझते हो। इसको क्या हो गया, इतना कट्टर बन गया ये, कहते कि नहीं। तो इसमें मूर्ख कौन है? कहने वाला मूर्ख है कि आप मूर्ख हैं? अज्ञानी मूर्ख होता है, वो कुछ भी कह सकता है, डरो नहीं उससे, विकल्पित मत हो जाओ, उनसे विकल्पित होना ही नहीं। अज्ञानी कह रहा है, हाथी को कुत्ते भोंगने से क्या फर्क पड़ता है? हाथी तो चलता है अपने रास्ते से, मस्त चलता है, कुत्ता वो करता रहता है। वो का मतलब क्या मालूम उसकी भाषा में? हो शने भी हो शने भी भाव दौड़ दी दीनी नम कल्याण होटी दी नम मणिमुंदन हो भाव दौड़ा में भी हो ये कुत्ते की भाषा है, क्या फर्क पड़ता? हाथी तो सूंड हिलाता हुआ आराम से गंभीरता के साथ जा रहा है। ऐसा रहना चाहिए सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को ऐसा रहना चाहिए, कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कौन क्या कह रहा है। बहुत से लोग धर्म को शर्म के कारण छोड़ते हैं, कौन क्या कहेगा, ये क्या बोल रहा है, क्या बोलेगा, अगर ऐसा बोलेगा तो क्या करूंगा। इसलिए थोड़ा सा चलो ही, एडजस्टमेंट करो ही उनके साथ। अरे मूर्ख, यही तो धर्म को खो जाते हो, यही तो तुम्हारा सारा पतन हो जाता है। जरा सी सहनशीलता अगर इसमें आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं अपने रास्ते से चलूंगा, इतना सा दृढ़ संकल्प हो जाए तो तुमको ऑटोमेटिक साहस आएगा, ऑटोमेटिक वो कट्टरता आएगी। कट्टरता लानी नहीं पड़ती, वो कट्टरता स्वाभाविक रूप से प्रकृति से कट्टरता आ जाती है और व्यक्ति गंभीर होकर चलता है। कुछ भी कानों में कोई कुछ भी कहे, फर्क नहीं पड़ता उसको। हम लोगों को नहीं कहते लोग, जब हम गली से जाते हैं, हे नंगा बाबा आ गए देखो नंगा बाबा, तो मुझे कुछ फर्क पड़ता है? उस गली से जाऊंगा तो क्या कहेंगे, नंगा बाबा कहेंगे, कैसे थोड़े से उस गली में कपड़े लपटिक लपेट करके उधर जाएंगे फिर कपड़े छोड़ देंगे, ऐसे भाव आते हैं। ध्यान रखना, आपको भी ऐसा ही रहना चाहिए। हम निर्ग्रंथ, मेरा धर्म है तो मेरे धर्म के लिए नग्न कहने वाले नग्न ही कहते, वस्त्रधारी कहना तो मेरे लिए बुरा लग सकता था। वो क्या कह रहे हैं, नंगा बाबा, तुम मैं इतने नंगा तो हूं ही, तुम झूठ कहां बोल रहे, सत्य बोल रहे हो, और नंगा कहने से मुझे बुरा लगना चाहिए? सत्य तो कह रहा है, झूठ बोलता तो मुझे बुरा भी लग सकता था। नग्न दिख रहा हूं और वस्त्रधारी कह दे, मुझे कैसा लगेगा? मुझे बुरा लग सकता था, सत्य तो बोल रहा है। ये तत्व विचार होता है, मैं जिस रूप में दिख रहा हूं उसी रूप में कहना मुझे तो अच्छा लगेगा, जिस रूप में नहीं हूं उस रूप में उल्टा कहते हो तो मुझे बुरा लगेगा। आरोप है वो, उल्टा आरोप, उल्टा आरोप तो बुरा लग सकता है, और जब वो सच कह रहा है तो मुझे ऐसा भाव आना चाहिए, मैं नग्न हूं नग्न ही रहूंगा, तो गली उस गली में क्या कपड़े पहनने के भाव आ जाए, जिस गली में नंगे बाबा जा रहा है नंगे बाबा जा रहा है ऐसा कहते, तो उस वक्त क्या मन में आ जाए कि नग्न होना बहुत बेकार है लोक व्यवहार में, ऐसे भाव आना चाहिए? अगर आ गए तो गिर गया गुणस्थान, जीव लज्जावश शर्मवश धर्म से उल्टे भावों को धारण करके वो सोचता है ये लोक व्यवहार है, इसलिए नग्नत्व को छिपाने के अगर भाव आ गए तो समझ लेना गिर गया धर्म, गया मुनित्व, भावलिंग चला गया, केवल भेष बच गया। नग्न तो है लेकिन नग्नत्व का लाभ नहीं मिला, और ऐसे नग्न होकर के उस गली से गुजरने की अपेक्षा से भाव नग्न होकर के गुजरो ना, छोड़ो शर्म को। आत्मा नग्न है, उस पर वस्त्र डाला नहीं जा सकता, शरीर भी नग्न है उस पर वस्त्र डाला नहीं जा सकता। आते समय थे नग्न, आते समय थे नंगे, जाते समय भी हो जाते हैं नंगे, बीच में क्यों दंगे वस्त्र का? बीच में तो गड़बड़ होता है। अब बीच में हम वस्त्र जो धारण करते हैं इसलिए करते हैं कि देखा देखी, बचपन में मम्मी पापा ने वस्त्र दे दिया तो उसको हम छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि पहले पासुन हम नहीं छोड़ सकते, वस्त्र भी पहले पासुन हो गए। सब लोग पहनते हैं इसलिए मुझे भी पहनना पड़ेगा, अगर मैं अकेला ही दिगंबर दीक्षा ले लूंगा तो क्या होगा, ये अगर मन में आया तो दीक्षा नहीं ले सकेगा। शांति सागर जी प्रथम दिगंबर मुनि थे, और दक्षिण से लेकर उत्तर तक दिल्ली तक, दिल्ली के चौराहों पर, सिटी के चौराहों पर नग्न खड़े होकर जो विरोध करते थे, पुलिस पीछे भागती थी, ए नंगा बाबा रुको उधर नहीं जा सकते, उधर तुमको कोई मारेगा, पकड़ेगा, उपसर्ग देगा, ऐसा कहते थे और शांति सागर जी कुछ विकल्प ही नहीं करते थे। दिल्ली की चौराहे पर खड़े होकर के उन्होंने फोटो खिंचवाया और फोटो खिंचवा करके चौराहों पर फोटो लगवाया, यहां पर एक फोटो लगाओ मेरा। ये सब करने पड़ते थे उनको, क्योंकि धर्म को स्वतंत्र कर रहे थे। गांधी जी देश को स्वतंत्र कर रहे थे और शांति सागर जी दिगंबर धर्म को स्वतंत्र कर रहे थे। और आप लोग इस समय किसको स्वतंत्र कर रहे हैं? सम्यक्त्व को स्वतंत्र कर रहे हैं समाज में। सम्यक दर्शन, मूर्ता से मुक्त, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, उसकी श्रद्धा, उसको स्वतंत्र बनाने जा रहे हैं। और इसके बीच में तुम लोक व्यवहार के पीछे देखोगे और ऐसे मन में लाओगे भावों को, ऐसे मन में भाव आ गए कि इतना कट्टरता जैनों में ठीक नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। क्या तुम्हें कोई खाएगा काट के तुम कट्टर बनोगे तो? क्या सोचते हो? तुम कोई आलू प्याज तो नहीं उठा के गबक से उठा के काट के खा ले? कट्टर यानी कट्टर, अपने धर्म के प्रति समर्पित, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाथी बन करके चलो रास्ते से, गंभीर रहो, शिववृत्ति रखो। तुम्हारा गुरु इतना शिववृत्ति रख करके दिल्ली तक जा सकता है तो शिष्य क्या डरता है? जागो शांति सागर जी के शिष्यों, सम्यक दर्शन पालन करो, कट्टरता निभाओ, समझौता नहीं किसी भी प्रकार का। क्या पंडित जी? शांति सागर जी का नाम लेते हैं, शांति सागर जी का काम नहीं करते। अनायतन से बचो, असंयमी अनायतन होता है, उनसे कोई लेन देन नहीं, आना जाना सभी कट। ये है शांति सागर जी का पक्का शिष्य, ये चौराहे पर घूम रहा है हाथी की तरह और सिंह की तरह। लोगों में घुल मिल करके रहो लेकिन हाथी बन करके रहो। संकोच नहीं, तुम अपने धर्म का धारण करो, पालन करो। अज्ञानी अज्ञान धर्म का निर्वाह कर रहा है तो तुम ज्ञानी बनकर ज्ञान धर्म का निर्वाह करो। हर चौराहे पर तुमको अज्ञानी देखना चाहिए, देख देख करके उनको शिक्षा मिलेगी, पाठ मिलेगा। एक दिन वो भी पूछेगा तुमसे कि आप ऐसे ही क्यों करते हैं। जब उत्तर मिलेगा तब उनको भी धर्मात्मा बनने का अवसर प्राप्त होगा। जैसे गौतम गंधर्व को मिला अवसर, जिंदगी भर मिथ्या तो करते रहे लेकिन अंत में जाकर के महावीर जब मिल गए दिगंबर, तो उनसे कुछ शिक्षा तो मिली उनको। वो भी तो एक आत्मा है, महावीर की आत्मा भी एक आत्मा है और उसकी आत्मा भी एक आत्मा है। उसने सोचा कि मेरी आत्मा कहां भटक गई और महावीर कितने आदर्श, कितने महान। अगर वो दीक्षा न लेते तो क्या गौतम गंधर्व को वैराग्य होता? क्या वो मिथ्या मार्ग को छोड़ते? रहो कट्टर, सम्यक दर्शन को बिल्कुल निर्दोष पालन करो, इन 8 दोषों से मुक्त सम्यक्त्व का पालन करो, लगने मत दो। कठिन है क्या? कठिन है क्या? कठिन तो है ही नहीं। हाथी को कौन सी बात कठिन है? कुत्ते भौंकते हैं ये कठिन बात लग रही क्या हाथी को? कुत्ते तो बहुत रहते हैं, मोले मोले में रहेंगे, हाथी क्या ये विकल्प करेगा कि मैं कैसे सिटी में घूमूं, हर गली में कुत्ते रहते हैं, ऐसा सोचता है हाथी? सहज रहता है, कुत्ते भी सहज रहते हैं, वो भी सहज रहता है, हाथी हाथी का धर्म निभा रहा है, कुत्ते कुत्ते के धर्म निभा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? भौंकना उनका धर्म है और चलना इनका धर्म है, दोनों अपने अपने सहज धर्म को निभा रहे हैं क्या नहीं? ऐसा रहना चाहिए। हाथी बनना है या कुत्तों में घुसकर कुत्ते जैसे बन के रहना है, ये मन से पूछो। हे आत्मा, जरा गंभीरता से सोच, धर्म को कैसे सुरक्षित रखना, कल्याण कैसे करना। मन कहता है हाथी बनना चाहिए, तो हाथी बनना चाहिए। देख, फिर हाथी बनना हो तो विकल्प मत कर, सहज बन जा। जिस चौराहे पर खड़े होना है, कोई कुछ भी कहे, कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए, संकोच भी नहीं आना चाहिए, दिल में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं अकेला, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आज स्कूल और कॉलेज में कुछ बात ऐसी होती है, एक विद्यार्थी छान करके पानी पी रहा है तो चार विद्यार्थी वहां देखते हैं, अरे बड़े धर्मात्मा हो गया, छान के पानी पीने लगा। कुत्ते भौंकते हैं कि नहीं? तो समय यही दृष्टांत याद में लाना, आए हैं कुत्ते भौंकने वाले, चुपचाप रहो, कुत्ते मत कहना नहीं तो मार देंगे वो। आए हैं चार कुत्ते भौंक रहे हैं, इसमें कुछ मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुमको तो छान करके ही पानी पीना है। तुम हाथी हैं, हाथी का धर्म निभाओ, वो कुत्ते हैं, कुत्ते का धर्म निभा रहे हैं, खुश रहो। कम से कम कुत्ता तो अपना कर्तव्य निभा रहा है ये सोचो, भौंक रहा है, ये कर्तव्य था किसके प्रति? जो विजाति दिखे उसके प्रति, और आप विजाति हैं उसके लिए। हजार विद्यार्थियों के बीच में एक पानी छान करके पी रहा है तो एक तो हाथी बन गया, और हाथी कुत्ते के लिए विजाति, क्या फर्क पड़ता है? छान के पियो, कौन क्या कहने वाला? धर्म करते समय कौन क्या कहेगा ये दिल में मत लाना, नहीं तो तुम्हारा धर्म डूब जाएगा, कर नहीं पाओगे। दूसरे के पीछे धर्म छोड़कर कब तक बैठोगे? वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसी में चला गया जिंदगी। कब करोगे धर्म को? धर्म करने के लिए लोग अवसर ही नहीं दे पाएंगे आपको। और जरा सा भी अपने मन में ये भाव आया कि कौन क्या कहेगा, तो आप भी कुत्ते बनने के लिए ही सोच रहे हैं, उन जैसे होने के लिए ही सोच रहे हैं। हाथी बनने की ताकत तुम में नहीं है, और तुम हाथी नहीं बन पाओगे। और वह व्यक्ति एकदम निर्लेप, निष्प्रह, निर्मोही रहता है, जो सहज होता है, टेंशन नहीं होता उसको किसी भी प्रकार का, विदाउट टेंशन जो सच है उसको मैं करूंगा, इस मूड में रहता है सदा, जो सच होता है उसी पर चलूंगा, कोई कुछ भी कहे, जो सच होता है मेरा, सच सो मेरा, मेरा सो सच नहीं, सच सो मेरा, और वो सच समझ में आ गया है तो मैं अपने ढंग से चलूंगा। नहीं चल सकते क्या अपन? शांति सागर महाराज अपने गुरु चल गए, और आपके महाराज चल रहे हैं, और उनका उपदेश सुनकर के आप नहीं चल पाएंगे तो आपको हाथी कैसे कहूं? हाथी बन के चलो, और गुरुओं का आदर्श ग्रहण करो, तीर्थंकरों का आदर्श ग्रहण करो, हाथी बनकर के चलो। कोई व्यक्ति, कोई संप्रदाय, कोई जाति, कोई कुल, कोई जीव आपको रोक नहीं सकता धर्म पालन करने से। आप जहां हैं वहीं करो, जहां जन्मे हैं, जिस घर में हैं वहीं करो, वही धर्म है, वही सच है, वही सत्य है। और दूसरे को बिल्कुल मत सुनना, सुनना लेकिन आचरण में नहीं लाना उसको। सुना रहा है तो सुनना पड़ेगा, वो तो शब्द तो आएंगे ही सुना रहा है तो शब्दों को कैसा ऐसा कर सकते हैं क्या, वो तो जाते ही कान में। हाथी को तो सुनना ही पड़ेगा जो शब्द आ रहे हैं चारों ओर से गली गली में, परंतु हाथी क्या रास्ता छोड़े, हाथी क्या संकोच करे मन में, संकोच भी नहीं करना, रास्ता भी नहीं छोड़ना, शीघ्र सीधा अपना ये मोक्ष मार्ग। आज के दिन मैं ये बता रहा हूं कि आपको साहस के साथ कैसे चलना चाहिए। हमारे सामने हाथी आदर्श है, हाथी के आदर्श को ग्रहण करो, और जो ना समझे बहुत कुछ कहने लगते हैं, सुनाने लगते हैं, यद्वा तद्वा आपको कुछ और रूप में देखना चाहते हैं, उस तरफ ध्यान ही मत दो, अपने आप में मस्त रहो। चाहे घर में हो, चाहे गली में हो, गांव में हो, इतर गांव में हो, देश में हो, कहीं भी रहो, धर्म को सुरक्षित रख के चलो। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम धर्म की रक्षा करो। दो ही हैं, एक धर्म है, एक आत्मा है। आत्मा सो तुम है, तुम्हें जो धर्म आया हुआ है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो आपका साथी है। दो ही हैं। अकेलापन का महसूस क्यों करते आप कि मैं अकेला ही पालन कर रहा हूं? अरे अकेले पान का आलवन, तुम एक हो गए और धर्म दूसरा, दो हो गए ना, फिर क्यों डर रहे? तुम एक हो गए और धर्म एक हो गया, दो जन हो गए, फिर क्यों डर रहे? तुम्हें डर लग रहा है तो धर्म बचाता है, चिंता मत करो, ये धर्म तुम्हारा साथी है, हर जगह बचाता। पर इतना ही है कि धर्म को तुम बचाओ, धर्म का हाथ छोड़ोगे तो अकेले पड़ोगे, और जिस समय अकेले पड़ोगे दुखी होते जाओगे, कोई रक्षक तुम्हारा है ही नहीं। कोई जीव तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा, धर्म एक ही रक्षा करता है, अंत समय में वही साथ आता है, साथ जाता है। वो भजन बोलते हैं ना, जब कोई नहीं मेरा, कोई एक भजन है, जब कोई नहीं होता मेरा तब धर्म ही होता है, तो गुरु ही होते हैं, ऐसा कुछ भजन है वो, उसको याद करो। धर्म को अपना बनाओ, साहस आ जाएगा। हम दो हैं, मेरे पास धर्म है, धर्म एक हो गया, मैं एक हो गया, दो जन हैं, हमको कोई डर नहीं है। स्मशान में भी जाएंगे, दिल्ली में भी जाएंगे, दिल्ली की चौराहे पर भी खड़े हो जाएंगे। इसी साहस के साथ गुरु गए थे, दिगंबर धर्म को स्वतंत्र कर दिया। उन्हीं की देन है कि आज हम लोग उस साहसपूर्ण महाव्रत को धारण करके, आज हम धारण करके चल रहे हैं उस रास्ते पर। किंतु जब हम श्रावक धर्म की ओर दृष्टिपात करते हैं तो बड़ा दुख होता है, इनमें अधर्म कूट कूट करके भरा हुआ है परंपरा से। कैसा धर्म? सम्यक्तों से विपरीत सारे लक्षण यहां दिखते हैं, सम्यक ज्ञान से विपरीत सारे लक्षण यहां दिखते हैं। सम्यक चारित्र से विपरीत सारे लक्षण मिथ्या चारित्र के लक्षण यहां दिखते, तो आपका धर्म परतंत्र है, आप अभी स्वतंत्र हुए नहीं। 50 साल पहले हमारे गुरु ने दिगंबरत्व को स्वतंत्रता दिला दी और उसके पश्चात दिगंबर मुनि होना प्रारंभ हो गए। पर ऐसा कौन से श्रावक हैं जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को रत्नकर्ण श्रावकाचार में लिखी हुई संविधान के अनुसार श्रावक धर्म को कट्टरता के साथ निभाने वाला एक श्रावक तो बने, उनको हम कह सकते हैं शांति सागर, ऐसे साहसी एक तो बने, एक एक उसका आदर्श बहुत प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा, स्वर्गों तक जाएगा, नरकों तक जाएगा। एक तो कट्टर बने, एक आदर्श बने, एक गांव में एक व्यक्ति अगर आदर्श है तो सारी समाज उसकी ओर देखती है, और जब समाज देखती है तो फिर आज न कल इस रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ को पढ़ेगी वो, अब पढ़ करके देखेगी इस जैसा आचरण किसमें है, विचार भी करेगी, इस जैसा आचरण एक श्रावक में है तो दूसरा श्रावक भी सोचेगा वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। जैसे हम लोगों ने सोचा शांति सागर जी ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते, हम करने लगे, ऐसे आप लोग भी करो। आप लोगों का धर्म अलग है, हम लोगों का धर्म अलग है। हम गुरुओं का आदर्श देखते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मूलाचार भी देखते हैं, इस मूलाचार में आई हुई बातों को हम कठिन समझते थे लेकिन गुरु को सरल हो गए, कैसे सरल हो गए हम भी देखेंगे, सरल हमारे लिए भी होना चाहिए, तो हमको भी सरल हो गया, सरल होता ही जा रहा है। पहले मुनियों की संख्या बहुत कम थी, एक ही संघ था पूरे भारतवर्ष में शांति सागर जी का, आज अनेक संघ हो गए। ये बात अलग है कि शीतलाचार्य संघ भी हैं, ये बात अलग है कि मिथ्यात्वी संघ भी हैं, ये बात अलग है कि सम्यक्त को सम्यक्त नहीं समझते और मिथ्यात्व को मिथ्यात्व नहीं समझते, कषाय भी करते हैं, कषाय करने वाले संघ अलग हैं, उनको आत्म कल्याण की फिक्र नहीं, वो अपने रास्ते से चल रहे हैं, चलने दे उसकी भी फिक्र मत करो, लेकिन एक को आदर्श बनाओ, पहले अपने मार्ग को एक को आदर्श बनाओ, एक कोई आदर्श बनेगा ना वो दुनिया में दिखेगा, उसके सामने कोई जवाब नहीं। शिथिलाचार चारित्र का कीड़ा है, जड़ को काट रहा है, वहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बहुत समय तक टिकता नहीं। कषाय है तो कषाय चारित्र की कीड़ा है, चारित्र को खा जाता है, वो चारित्र गया। और कषाय के वजह से अगर मिथ्या मार्ग को भी साधु ने पकड़ लिया तो सम्यक तो भी गया, अब खोखला दिगंबरत्व बच गया, वेश बच गया, दिगंबरत्व वहां है ही नहीं। और इसी बात को असंजदम न वंदे कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, महावीर स्वामी कह रहे हैं, वो भी दिगंबरत्व हे प्राणी तेरा व्यर्थ है, वो दिगंबरत्व वो वेश भी व्यर्थ है जिसके अंदर कषाय है, राग द्वेष है, और उसी कषाय के वजह से मिथ्यात्व का संपोषण करता है, वहां भी आत्म कल्याण नहीं है। और उन हाथियों से उपदेश दे रहे हैं, प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु, हे हाथियों तुम वास्तव में हाथी के स्वभाव वाले हो तो प्रणाम और विनय वहां नहीं करना जहां पर कषाय है, मिथ्यात्व है, राग द्वेष है, धर्म की अप्रभावना है, संविधान के अनुसार आचरण नहीं है। कितना कितना चिंतन करना पड़ेगा आपको अभी। और करना है, चलना है, चलने में ही सुख है। और चलना जब आप प्रारंभ करेंगे, जो आनंद आता है वो दुनिया में कहीं भी आनंद नहीं है। सहज होकर के चलो। देव शास्त्र गुरु के लक्षण को अच्छी तरह से समझकर उनको स्वीकार करो और उसमें भी कट्टरता लाओ। कट्टरता का तात्पर्य यह है कि हाथी बनो। हाथी कट्टर रहता है ऐसा? कट्टर का मतलब हटी रहता है ऐसा नहीं, सहज रहता है। उसकी गंभीरता उसके साथ कितना सहज है, उस सहजता का नाम धर्म है। धर्म के दर्शन हाथी में होते, हाथी बनने पर होते हैं। अमूढ़ दृष्टि अंग, मूढ़ता किसी प्रकार से नहीं होना। और इस अमूढ़ दृष्टि अंग में दोष कैसा लगता है तो बताया, अज्ञानता से धर्म कार्य करना और अज्ञानियों के धर्म का समर्थन करना। देखो, तुम धर्म का समर्थक भी हो रहे हो, आना जाना, रहना, बातचीत होना, उसका समर्थन करना, ये भी अगर हो रहा है तो तुम्हारे धर्म में कीड़ा लग रहा है सम्यक दर्शन में। दोष तो लगता ही है। अज्ञानियों के धर्म का समर्थन के भाव भी नहीं रखना चाहिए, ये निरतिचारता है। और इसमें हम जानबूझ करके कर रहे हैं तो वो कषाय है या स्वार्थ है। हम कहीं न कहीं किसी न किसी स्वार्थ में अटके हैं, तभी तो वो व्यवहार चल रहा है अज्ञानियों के साथ, माने उनके अज्ञानता के धर्म को समर्थन देने का ये भाव क्यों आ रहे हैं? ये कषाय है। ये किसकी कषाय है? हमारी कषाय। कौन सी कषाय? लोभ कषाय। और लोभ कषाय स्वार्थी बनाता अपने को और हमारे धर्म को डुबो देता है। हमारी कषाय ही हमारे धर्म का घात करता है। फिर धर्म का घात होने पर रोना पड़ता है, मम्मी मम्मी में, मम्मी मम्मी क्या, तुमने क्यों छोड़ा धर्म को? मम्मी का हाथ छोड़ा, जिनवानी का हाथ छोड़ा, जिनवानी मम्मी है, हाथ छोड़ा, पीछे रह गए, अब उठाने वाला कौन, तुझे कौन उठाएगा? अब रोने से क्या फायदा, पहले से सोच के चलते। टाइम हो गया, प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से